SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
इस वर्ष की अपनी अंतिम बैठक के लिए ऑस्ट्रेलियाई संसद फिर से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद उनको सम्मान देने के लिए संसद को रोक दिया गया था, मगर अब संसद की इस बैठक के सामने कई मुद्दे हैं। देश में जीवन यापन की बढ़ती लागत के चलते लोगों की निगाहें कोषाध्यक्ष जिम चार्मर्स के बजट पर हैं। इसके अलावा संसद में फेडरल एंटी करप्शन कमीशन का मुद्दा भी केंद्र बिंदु बना है। फेडरल एंटी करप्शन कमीशन से जुड़ा कानून बुधवार को संसद भवन में ले जाया जाएगा, जिसमें सभी क्रॉस बेंच संसद सदस्य बताएंगे कि वे कानून में क्या चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल मार्क ड्रेफस बताते हैं,
The Australian people believe in integrity. The Australian people voted for a government which will deliver a powerful, transparent and independent National Anti-Corruption Commission. The commission will have jurisdiction to investigate serious or systemic corruption and will form a central pillar in the integrity framework of our country. It'll help restore trust and enforce standards of integrity and accountability in our federal government system.
क्रॉसबेंच सांसदों और सेनेटरों का कहना है कि नए एंटी करप्शन कमीशन का समर्थन करने में जल्दबाजी नहीं की जाएगी और वे सर्वोत्तम अभ्यास के मॉडल पर जोर देंगे। 13 निर्दलीय और ग्रीन्स के एक संयुक्त बयान के अनुसार 6 प्रमुख क्षेत्रों पर काम किया जाएगा, जो एक सफल आयोग के बुनियादी ढांचे को आवश्यक समर्थन देने के लिए तैयार किया जाएगा, और इनमें शामिल होगा विसल ब्लोअर की सुरक्षा और फंडिंग में पारदर्शिता। आपको बताते हैं, विसल ब्लोअर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी निजी या सार्वजनिक संगठन के भीतर की गतिविधियों के बारे में जानकारी देता है जो अवैध मानी जाती है। और इसी को लेकर ग्रीन सेनेटर डेविड श्रुबिज का कहना है कि उनकी पार्टी सबसे शक्तिशाली और व्यापक फेडरल रेगुलेटर चाहती है।
We want to make sure that there's jurisdiction there for the ICAC to not just get corporations that contract with the government, but get corporations that are trying to make billions and billions of dollars from changing government policy or getting discretionary decisions like a coal mine approved. They need to be roped into the jurisdiction, and this needs independent funding. We can't have the government of the day starving it of funds so it can't do its job. There needs to be a multi-party committee that is basically setting the funding for this commission.
एंथनी एल्बनीजी सरकार अगले महीने यानी 25 अक्टूबर को अपना पहला बजट सौंपने की तैयारी कर रही है। कोषाध्यक्ष जिम चार्मर्स ने आगामी वित्तीय विवरण को ब्रेड और बटर बजट के रूप में वर्णित किया है, जिसका अर्थ है बुनियादी और सामान्य, और इसका उद्देश्य है खर्च में कटौती और जीवन यापन के दबाव की लागत को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना। कोषाध्यक्ष ने बजट की स्थिरता में सुधार के लिए व्यापक कर सुधार से इनकार नहीं किया है, लेकिन वे कहते हैं कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को कर का उचित हिस्सा देना सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रश्नकाल में उन्होंने कहा,
The task of the budget will be to provide responsible cost of living relief that has an economic dividend, and that's why cheaper childcare is so important with an economic dividend. Cheaper TAFE fees, cheaper medicines, getting wages moving again, beginning with the lowest paid Australians. That's why this is so important. Now, I think Australians understand that the new government is doing what they can to responsibly provide cost of living relief to Australians. They know that the mess that those left us can't be fixed in one budget alone.
इसके अलावा जिम चार्मर्स सस्ती दवाओं की बात भी कर रहे हैं। 1 अक्टूबर से नई दवाओं को फार्मास्यूटिकल बेनिफिट स्कीम में सूचीबद्ध किया जा रहा है, ताकि उपचार की लागत में कटौती की जा सके। इसमें पेट के अल्सर, स्किज़ोफ्रेनिया, मिर्गी और गठिया को लक्षित करने वाली दवाएं शामिल हैं, और ऑस्ट्रेलियाई लोगों को प्रतिवर्ष लगभग 150 मिलियन डॉलर बचाने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर भी कानून पेश कर रहे हैं जो पीबीएस पर दवाओं की अधिकतम लागत में 30% की कटौती करेगा। वे कहते हैं,
There will be a cut in price to more than 2,000 brands of medicines on the PBS. These price cuts will deliver $130 million in additional price relief to Australian households through reduced co-contributions from those Australian households. And those brands of medicines include very, very commonly used medicines right across the Australian community.
28 सितंबर को पूर्ण ईंधन उत्पाद शुल्क वापस लाया जाएगा और इसी के चलते वाहन चालकों को टैंक भरने का आग्रह किया जा रहा है। नेशनल पार्टी के नेता डेविड लिटिल प्राउड का कहना है कि लेबर पार्टी को इस वजह से अन्य लागतों में कटौती करने की आवश्यकता है। वे कहते हैं,
If they're not going to continue on with this, with the fuel excise, then what are the measures they're going to put in place to reduce the cost of living? This is a cost of living crisis that Jim Chalmers seems to be ignorant to. He said he's going to have a bread and butter budget. Well, that's dead right, because that's all Australian families to be able to afford after he finishes with them.
पिछले हफ्ते एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें टेलीकॉम कंपनी ऑप्टस ने साइबर हमले की घोषणा की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के 98 लाख लोगों की व्यक्तिगत जानकारी चुरा ली गई थी। और अब ये ऑप्टस ब्रीच भी संसद का ध्यान खींच रहा है, क्योंकि फेडरल सरकार नई साइबर सुरक्षा का अनावरण करने की तैयारी कर रही है। साइबर सिक्योरिटी मंत्री क्लेयर ओनील उन सुरक्षा उपायों की घोषणा करने वाली हैं। वे कहती हैं,
A very substantial reform task is going to emerge from a breach of this scale and size, and there's a number of policy issues that I think the public will soon become quite aware of. One significant question is whether the cybersecurity requirements that we place on large telecommunications providers in this country are fit for purpose.
और वहीं विपक्ष के गृह मामलों की मंत्री कैरन एंड्रूज और साइबर सुरक्षा मंत्री जेम्स पैटरसन रैमसमवेयर एक्शन प्लान के लिए गठबंधन बिल को फिर से पेश कर रहे हैं। कैरन एंड्रूज कहती हैं,
Close to 10 million accounts, data sets have been taken. That is a huge risk to the customers. Now, unfortunately, the Labor government, the minister in particular, has been asleep at the wheel and has certainly not done all that she could do to reassure the Australian public that the government will do what it can to protect them.
SBS News ki is report ko prastut kiya hai Natasha Kaul ne SBS Hindi ke liye.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.